अब आप देखिए कि यहाँ अल्लाह ताला ने जो एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, और वो क्या कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। थोड़ी सी बात इस पे करेंगे, और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने दीन का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था। बाज़ाब्ता तौर पे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुआ। हर दौर के नबी की शरीयत कुछ चीज़ों में, जिसमें बेसिक्स और अकायद थे, वो सेम थी। हर नबी ने अल्लाह को एक मानने की बात की, उसी की इबादत का हुक्म दिया, उसी के तकवे की बात की। होते होते यही दीन जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। बीच में एक तवील अरसा दीन जो था वो यहूद के पास रहा, बनी इसराइल के नाम पे। कुछ अरसा बीच में नसारा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में रहा। लेकिन अब यहाँ पे आके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैं तुम पर अपना दीन मुकम्मल कर रहा हूँ। गोया कि इस बात की खबर थी कि अब इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। ये आयत जो थी अरफा के दिन नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज यानी हज्जतुल विदा, जो एक ही हज था आपकी ज़िंदगी का, उस वक्त अरफात के मैदान में थे। आपके साथ तकरीबन 1.5 लाख यानी 1.5 लाख के करीब सहाबे कराम थे। ये वो लोग थे जो 10 साल मदीना में रहने के बाद से पहले 13 साल मक्का में मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजर चुके थे। एक वो दिन था कि जिस दिन इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी की बात हुई, तो अल्लाह के नबी की बात सुनने वाली सिर्फ़ एक औरत खदीजा थी, फिर उसके बाद अबू बकर थी। यानी एक दाने से एक बात शुरू हुई और तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में मौजूद थे, अरफा में थे। जुमे का दिन था, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन। आज के दिन से क्या मुराद है? इसकी दो तफसीरें हैं। पहली तफसीर क्या है कि आज के दिन से मुराद वही अरफा का दिन है जिस दिन के ये आयत नाजिल हो रही थी। और दूसरी तफसीर जो बड़ी अहम है वो क्या है कि अल यौम से मुराद ख़ास दिन नहीं बल्कि इरा है। इरा किसको कहते हैं? एक ख़ास टाइम पीरियड, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी ज़िंदगी से आज तक का दिन, यानी अब इस्लाम उरूज पे आ गया। ये वो वक्त था कि मक्का फ़तह हो चुका था, कुफ्फार का जोर टूट चुका था, मुनाफिकीन अपनी मौत आप मर चुके थे, यहूद जो थे वो अरब की हद से निकाल कर खैबर की ज़मीन और उधर से भी बाहर की तरफ कर दिए जा रहे थे। अब चारों तरफ इस्लाम का बोलबाला था। अल्लाह के नबी सल्लम पर वही की कैफियत तारी हुई। आपके ऊपर जब वही की कैफियत आई तो इतनी बोझल हो गई आपकी ऊँटनी, कैसे लगता था कि वो गिर जाएगी। और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये फिर कुरान पाक की तकरीबन आखिरी आयत है। इस आयत के बाद अहकाम से मुतल्लिक कोई आयत नाजिल नहीं हुई। हाँ, कुछ बातें जिसमें जन्नत की बातें या जहन्नुम की बातें, तरगीब और तरहीब है, ये नाजिल हुई। और इस आयत के नाजिल होने के 81 यानी 81 दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लम का इंतकाल हुआ। 9 जिलहज को ये नाजिल हुई और 11 हिजरी की जो 12 रबीउल अव्वल है उस पर अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। ऐसे लगता है कि बड़े अहतमाम के साथ ये आयत नाजिल हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि वाकई अल्लाह ताला उम्मते मुस्लिमा को पिछले तमाम अम्बिया की शरीयत और उस विरसे का ज़िम्मेदार बना रहा था। एक अमानत जो थी वो उम्मते मुस्लिमा के हाथ में आ रही थी, और बताया कि आज वो दीन अपनी असल शक्ल में पूरा हो गया जो आदम से शुरू हुआ। याद रखिए कि हर दौर के नबी की शरीयत मुकम्मल थी उस दौर के तकाज़ों के लिए। कभी भी किसी दौर में अल्लाह ताला ने अधूरी शरीयत नहीं दी, ना कोई उसमें नक्स था। लेकिन जो इंसानियत का इर्तका था, क्योंकि जो लोग उस दौर में थे वो थोड़े थे, कम थे, तकाजे मुख्तलिफ थे, अल्लाह के नबी तक ना सिर्फ ये कि दुनिया में इंसानों की कसरत हो चुकी थी बल्कि दीन की भी कसरत हो गई। जब यह आयत नाजिल हुई तो रिवायात में आता है कि कुछ लोग हज़रत उमर फ़ारूक के पास आए, यहूद के उलमा थे, कहने लगे कि तुम्हारे कुरान पाक में एक ऐसी आयत है। हो सकता है बाद में ये बात उनसे कही हो, लेकिन हज़रत उमर से बहरहाल ये बात उन्होंने की कि तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है कि अगर हम पर वो नाजिल होती, यानी तौरात में ये आयत नाजिल होती, तो हम उस दिन जश्न ईद मनाते। हज़रत उमर ने पूछा वो कौन सी आयत है, तो कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। और मैं लफ्ज़ अकमलतु को पढ़ती ना तो मेरे दिल में ऐसे हल्की सी एक जैसे लहर उठती है। कौन कह रहा है? मैं मुतकल्लिम का सीगा, वाहिद मुतकल्लिम। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने मुकम्मल की। ये नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया, बल्कि मैंने मुकम्मल किया। حضرت عمر نے جب ان کی یہ بات سنی تو کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ آیت کب اور کس جگہ نازل ہوئی، ایک نہیں ہمارے لیے تو اس دن دو عیدیں تھیں۔ کیسے؟ ایک تو جمعہ کا دن تھا اور ایک یعنی عرفہ کا دن تھا۔ تو اس ایک بات سے بھی بہت ہی بڑی بات سمجھ آتی ہے، مزاج دونوں قوموں کا۔ یہود کا مزاج کیا ہے کہ جب کوئی خاص کام ہو تو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ ڈے سیلیبریشن کے کلچر پہ تھوڑی سی بات کروں گی اسی بات کی بنیاد پہ کہ یہود اور نصارہ کے دین میں ڈے سیلیبریشن بڑی اہم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو حکم کیا ہے، دیکھو اللہ نے بات کیا ہے، کہ بلکہ یہ کہا کہ ہم اس دن جشن منائیں گے، یادگار رکھیں گے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کہیں لوگوں کے پیدائش کے دن کو منایا جاتا ہے اور کہیں ان کے وفات کے دن کو، کہیں کسی ملک کی آزادی کے دن کو منا کے اس کے اندر جشن آزادی کے نام پہ منایا جاتا ہے، اور تو کچھ نہیں، ہم تو عام اپنے انسانوں کی یادگاریں یعنی ان کی برتھ ڈیز بھی مناتے ہیں اور ان کی برسیاں اور اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔ اگر ڈے سیلیبریشن کی اجازت اسلام میں بھی دے دی جاتی تو آپ دیکھیے کہ 365 دن تھوڑے ہوتے، کیونکہ ہمیں تو تقریباً 25 سے زائد تو انبیاء کرام کے نام پتہ ہیں۔ پھر ہر ایک کے پیدا ہونے کا دن لکھیے، ان کی وفات کا دن لکھیے، جس دن وہ نبی بنے، ہاں جس دن ان کے دشمن مارے گئے، اور کچھ نہیں، صرف اللہ کے نبی کی زندگی پہ آ جائیے۔ آپ کی زندگی کے اگر ڈے سیلیبریٹ ہوتے تو ساری جنگیں، ہجرت کی راتیں، مکہ کے دن، یہ 365 دن تو اتنے تھوڑے ہو جاتے کہ ایک ایک دن میں کئی کئی یادگاریں ہوتی۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ ویلنٹائن ڈے ہے اور دس اینڈ دے۔ اسلام تو ایک ایسی ابدی خوشی دیتا ہے انسان کو کہ جس کو پانے کے بعد ہر دن عید بنتا ہے۔ اور انسان، اسلام جو ذمہ داریوں کی بات بتاتا ہے، شخصیت پرستی کا رد ہے۔ اسلام نہیں پسند کرتا کہ کسی کے مرنے اور جینے کو اتنا اہم کر دیا جائے کہ پھر اسی کے پیچھے لوگ لگ جائیں، اور پھر کبھی شب برات منائیں، اور کبھی پھر لیلۃ القدر کی راتوں میں کچھ کام کریں، اور اس کے بعد پھر کچھ اور کام کریں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب ان طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کو صرف انسانوں سے جوڑا دے، اس کو نہیں منایا گیا۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو کچھ کام کرنے کے دنوں کو اسلام نے منایا۔ عید الفطر روزے داروں کے لیے انعام کا دن ہے، عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کو خراج تحسین پہنچانے کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے جس دن محرم کا جو 10 کا دن ہے، اسی طرح رمضان کی آخری راتیں، ذوالحج کے شروع کے دن، یہی بہت ہیں۔ آج بھی وہ لوگ جو ہر وقت ایک دوسرے کی سیلیبریشن کے غم میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ شاید کوئی مہینہ جاتا ہو کہ ان کو کوئی گفٹ نہ خریدنا پڑتا اور پھر دعوتیں نہ کرنی پڑتی ہوں۔ کوئی بظاہر قباحت نہیں بھی ہونا تو انسان بامقصد زندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہر وقت بس کچھ فن ہی ہے زندگی میں۔ ایک پروگرام آنا ہوتا ہے، اس سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پروگرام جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پھر کئی یادگاریں چل پڑتی ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ بامقصد لوگوں کے کام بھی بامقصد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت پیارا پیغام دیا، وہ ہے اصل میں دیکھنے کا، اور وہ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم۔ لفظ اکملت میں لفظ کمال چھپا ہوا ہے۔ کمال کہتے ہیں کس کو ہے؟ ہم عام لفظوں میں تو بولتے ہیں نا، بھائی یہ چیز با کمال ہے، اردو کا ہی لفظ ہے، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ آج کے دن تمام حدود اور فرائض، احکامات اور آداب جو تھے مکمل کر دیے گئے، نہ اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہے، نہ کمی کی ضرورت ہے، اور اب اس کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ کمال کا مطلب کیا ہے، ایک اور اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ دین کی جو باتیں دینی تھی وہ ساری کی ساری اب اپنی پیک پہ پہنچ گئیں، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی۔ اسی ایک لفظ پہ اگر آپ غور کرتے ہوئے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والے وہ تمام کام جو نیکی کی صورت میں رائج کیے گئے، رجب کے کنڈوں کی بات کر لیں، یہ میں نے نام جان کے لیا کیونکہ اس کا جو اصل ثبوت ملتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی 100 سال بعد ملتا ہے۔ آج جو دین کے نام پہ رسمیں رائج ہیں نا ہماری سوسائٹی میں، آپ ان سب کو لکھیں ایک پیج پہ، پھر ان سب کی بیک پہ جا کے دیکھیں، کوئی آج سے 100 سال پہلے شروع ہوئی، کوئی 200 سال پہلے شروع ہوئی گی، کوئی کچھ اس سے پہلے، یہ سب کس چیز کے خلاف ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ سمپل سی بات ہے۔ دیکھیے گھر بن رہا ہوتا ہے نا، آپ اس میں وسعت کر سکتے ہیں۔ مثال ہے کہ یہ ہال جس میں ہم بیٹھے ہیں، اگر یہ بن رہا ہوتا نا تو ہم 4-6 انٹے ادھر 4-6 انٹے ادھر بڑھاتے تو اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی، تو اب یہ روم اور بڑا ہو جاتا، ہاں؟ لیکن اب یہ بن چکا ہے، अब कोई कहे नहीं मुझे इसमें 100 ईंटें और लगानी है, जहाँ मर्जी लगा लें ये रूम बड़ा नहीं होगा बल्कि और तंग हो जाएगा। आप इसकी दीवारों पर लगा लें कर लें लेकिन वुसत नहीं बढ़ती। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के नबी के ज़रिए एक मुकम्मल दीन दिया गया, अब उसको बढ़ाने या कम करने की सूरत में उसकी असल कैफियत ख़त्म होगी। रोटी पक रही है ना, उसको जितना मर्जी झाड़ लें फट जाएगी, फटती जाएगी। एक दफ़ा वो तवे पर डल के सेक लग गया, अब उसको कोशिश करेंगे ना बड़ा करने की तो वो टूट जाएगी। यही आज के दौर में हो रहा है कि लोग दीन के छोटे छोटे टुकड़ों को तो इतना अहम करके मनाते हैं कि जिसके अंदर असल दीन की जो बातें हैं वो रुक जाती हैं। फिर दूसरी बात देखिए, व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने तुम पर अपनी नेमत को पूरा किया। यहाँ नेमत से क्या मुराद है? नेमत से मुराद यहाँ इस्लाम भी है। इस्लाम का गलबा, उरूज, मुखालफों का मغلوب होना, मुसलमानों को फ़तह मिलना, मक्का का फ़तह होना, जाहिलियत की सारी रसूमात का टूट जाना, ख़त्म हो जाना। और बास कहते हैं कि इस साल के बाद फिर किसी और मुशरिक को हज करने की जो इजाज़त नहीं मिली थी उसका भी इसमें इशारा है। यानी यहाँ अल्लाह ताला ने इस चीज़ को एक नेमत कहा कि इस नबी के ज़रिए से हमने तुम्हारे पास वो चीज़ रख दी कि जिसको अगर सामने रखोगे तो वाकई तुम महसूस करोगे कि तुम खुशकिस्मत लोग हो। लेकिन अफसोस की बात है कि वही उम्मत जिसको अल्लाह ने इतनी प्यारी खुशखबरियाँ दी, जिसको इतमाम नेमत की खुशखबरी दी थी, वही लोग आज अपने दीन से शर्मिंदा शर्मिंदा फिरते हैं। सिर्फ अगर इस आयत को ही सामने रख के अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें जो दीन दिया, हमारा तो कोई इख्तियार नहीं था, कोई हम में से ये इख्तियार रखता था कि अपनी मर्ज़ी से किसी मुसलमान घराने में पैदा होता? जब अल्लाह ने नेमत तमाम कर दी तो ये नेमत कब होगी? जब लोग इस नेमत की कदर करेंगे। हम सब सोचें कि आज वाकई हम अपने आप को मुसलमान कहते हुए खुशी महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गए गुजरे दौर में लोग मुसलमान होने पर खुशी महसूस करते हैं, लेकिन जब दूसरों के बीच में आते हैं, जब अमली तकाजे आते हैं, जब इसी दीन के किसी मामले का इजहार होता है तो क्या फिर उस वक्त शर्मिंदा तो नहीं हो जाते? तो इसके ऊपर इंसान जितना गौर करता जाएगा उसको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी। तीसरी चीज़ देखिए, रदीतु लकुमुल इस्लाम अदीना, इसमें भी एक बहुत गहरा नुक्ता छुपा हुआ है। और वो क्या कि जिस नाम को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया वो इस्लाम है। कोई बाद का रखा हुआ नाम काबिले कबूल नहीं। अल्लाह ने तो इस्लाम के लिए पसंद किया क्या नाम? अल इस्लाम। पिछले अंबिया ने भी अपने आप को मुस्लिमून कहा और आज इस नबी ने भी अपने आप को मुसलमान कहा, तो इसमें अल्लाह के नबी के आखिरी नबी होने की दलील मिल रही है। और दूसरी बात इससे पता चलती है कि अगर आज भी कोई इस्लाम के अलावा दूसरा नाम रखेगा तो वो काबिले कबूल नहीं है। अब देखिए, जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत उमर फारूक जो थे वो रोने लगे। बाकी लोग खुश हो रहे थे कि वाह देखा अरूज आ गया, लेकिन उमर फारूक को रोता देख के पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे कि अब ऐसे लगता है कि ये अरूज पे चीज़ चली गई है ना, तो अब आपका क्याम कम है क्योंकि अब आपके जाने के दिन आ रहे हैं। हर नबी दुनिया में एक मिशन देकर भेजा जाता है, जब वो मिशन पूरा हो जाता है ना तो अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला देते हैं। इसी तरह जब आयत सूरह नसर की ज़ात जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाज नाजिल हुई तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। ये फरासत होती है। आम लोग हर चीज़ को ज़ाहरी नज़र से देख रहे होते हैं, लेकिन फहम वाले लोग उसको दूसरे रंग से देख रहे होते हैं। कहा अबू बकर आप क्यों रो रहे हैं? कहा इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लम अब आपका मिशन चूँकि पूरा हो गया तो अब आपके दुनिया से जाने के दिन है। तो उम्र फारूक की इस बात पर भी अल्लाह के नबी ने तस्दीक की और वाकई आने वाले वक्त ने दिखा दिया कि सिर्फ 81 डेज़ कितने होते हैं, 2.25 महीने तकरीबन बनते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लम इस दुनिया से रुख्सत हो गए और हमें एक बहुत बड़ी अमानत दे के चले गए कि तुमने अब इस दीन की हिफाजत करनी है। अगर आज इस दौर में अल्लाह ताला हमें इस दीन की खिदमत के लिए चुन ले तो सर सजदे से न उठाएं, दिल से शुक्र अदा करें कि अल्लाह जिस काम को अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक किया, हमें भी अपनी ज़िंदगियों के आखिरी लम्हे तक इसको करने की तौफीक दे। इस पर जितना शुक्र करें, हमारे सामने कुछ बच्चियाँ बैठी हुई हैं, आप लोग तो इस लिहाज से और खुशकिस्मत हैं कि वो बात जो कुछ आंटीज़ 40s और 50s या उससे इर्द गिर्द में सुन रही हैं, आप में से बहुत सारी बच्चियाँ इस वक्त सिर्फ टीनेजर और आज वो आयत सुन रही हैं कि जो आयत बहुत सारे लोगों ने भी सुनी भी नहीं होगी। आप तो इस पे और शुक्र करें और अल्लाह से आज यहाँ उठने से पहले ये दुआ करें कि अल्लाह जिस तरह आज हमने इस एक आयत को सुन लिया, हमें भी तौफीक दे कि अपनी ज़िंदगी के कुछ साल कुछ महीने तो लगाएं और इस कुरान को समझ सकें कि जिसकी एक एक आयत जो है वो खुशखबरियों से भरी हुई है اور جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. بہت اس پہ اور بات ہو سکتی ہے, لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس آیت کے آخری حصے پہ چلیں اور پھر ممکن ہوا تو بعد میں انشاءاللہ ڈسکشن کر لیں گے. آیت کے آخر میں پھر اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو آیت کے شروع میں تھا, کیا فمن اضطر فی مخمصۃ, اور جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں, غیر متجانف لاثم, تو وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی جب اتنی پابندیاں لگ گئیں اس کے بعد جو بندہ صبر کرے گا, شکر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا راستہ بنا دے گا. پیچھے اگر نفس کے تقاضوں سے کوئی ایسی چیز کھا لی, کوئی پی لی, کوئی حرام کو حلال کی زد میں لے آئے, تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر معافی مانگیں گے, وہ معاف کر دے گا.